सोमवती अमावस्या श्रावण अंतिम सोमवार। अंतिम सोमवार किसका था? श्रावण का था ना, हम लोगों का तो नहीं था। अभी तो और भी सोमवार आएगा। सोमवार जो है ना, शंकर जी का प्रिय दिन है। ज्योतिष शास्त्र में रविवार को बोलते हैं सूर्य वासर, और सोमवार का नाम है चंद्र वासर, मंगलवार को भौम वासर, ऐसे शनिवार को बोलते हैं मंद वासर। सबका अलग अलग नाम है ज्योतिष भाषा। उमया सहित सोम, उमा के समेत, ये इसलिए सोम। भगवती पार्वती के साथ, उमा के साथ शिव जी हैं, इसलिए सोम। और सोम का मतलब होता है चंद्रमा। शिव जी ने इसे चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्मे, जो सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सोमनाथ चंद्रमा का जिन्होंने कल्याण किया, चंद्रमा के ऊपर जो कलंक लगा और अपने ससुर के द्वारा श्राप मिला, क्षय रोग हो जाए, उस क्षय रोग से बचने के लिए ही शंकर जी की उपासना की थी, जिसमें शिव जी ने प्रकट होकर दर्शन दिया, वही सोमनाथ है। चंद्रमा के नाम से उनका नाम पड़ गया सोमनाथ, मतलब चंद्र के स्वामी चंद्रमानाथ। इधर सोम का मतलब हो गया उमया सहित सोम। ऊ मां तपस्या करने जा रही थी, मां ने रोका, अरे ओ मत जाओ, ऊ मां मत जाओ, घर में तपस्या कर लो, पहाड़ में जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए उनका नाम पड़ गया उमा। पर्वत की पुत्री होने से नाम पड़ा पार्वती। पत्ते खा करके तप करती थी, इसलिए नाम पड़ा अपर्णा। और अन्न के द्वारा सबका भरण पोषण करती, इसलिए अन्नपूर्णा। भिक्षाम देहि कृपा अवलंबन करी, माता अन्नपूर्णेश्वरी। उसी में आता है अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे। शंकर प्राणवल्लभे, शंकर जी के प्राणवल्लभा, प्राण से भी बढ़कर प्रिय है, अथवा प्राण के समान है जो प्रिय है। जीवन में सबको सबसे ज्यादा प्यारा क्या होता है? प्राण। शरीर में कुछ भी कष्ट होने प्राण के ऊपर ही जोर पड़ता है, चाहे सुख हो दुख हो। और प्राण से बंधा हुआ है मन, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः। और ये मन जब ठीक होगा, मन चंगा, तो कठौती में गंगा। कठौती क्या है? परात। परात में रहने वाला जल भी गंगा जल हो जाता है। कब? जब मन हो चंगा। पंजाबी में बोलते हैं तुसी चंगा हो, आप ठीक ठाक हो, अच्छे हो। यहां उसी को बोलते हैं तू भी चांगला झाले, बोले क्या आप कैसे हैं? तो चंगा से चांगला बनता है, चांगला झाले, अच्छा है। तो ये मन है अच्छा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। चंगा चांगला ऐसे कैसे शब्द भाषा बनती? नहीं, मन कब हो चंगा? तो ये भी तरीका है, मन का उल्टा करो तो बनता है नम। और नम का अर्थ होता है न मे इति नम। नमस्कार करते हैं ना, तो प्रायः अहंकार से हम लोगों की गर्दन तनी रहती है ऐसे। और तो ये हो गया अहंकार की अकड़। और जब मस्तक झुकता है, गर्दन टेढ़ी हुई, तो अहंकार से हम नीचे आ गए, अहंकार कम हुआ। इसके लिए मस्तक झुका के प्रणाम करो। यदि ऐसे बोलोगे ना प्रणाम, तो ये कोई तरीका नहीं हुआ, अशिष्टता हुई। तो न मे इति, प्रत्येक वस्तु के साथ अहंकार करना कि ये मैं हूं अथवा मेरा है, न मे इति जो समर्पण का भाव है कि हे भगवान मेरा कुछ भी नहीं है, यही है नमस्कार। नमः शब्द त्याग ऐसा आता है, नमस्कार का मतलब होता है त्याग। दिखता तो नहीं है, क्या बोलते हैं, नमस्कार की भेंट है, बोलते हैं प्रभु मैं और आपको क्या दे सकता हूं। आप किसी को कितने भी वस्तु दे दो, खास करके जब गुरुजनों के पास जाओ, सब कुछ दो लेकिन आप नमस्कार न करो, उनको बहुत बुरा लगता है और समझ जाते हैं कि इसको घमंड है। और भले हमारे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन आप प्रणाम कर लो, सब कुछ हो गया। नमस्कार करने वाले व्यक्ति को तो इस संसार में लौट के आना नहीं पड़ता। इसलिए एक संप्रदाय है जिसका नाम ही है कृष्ण प्रणामी। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधा बवृते न तुल्यः, दशाश्वमेधे पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। हम लोगों को जन्म लेना पड़ा, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया। किया होता तो शायद जन्म नहीं लेना पड़ता है। नमस्कार का इतना बड़ा फल है। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामु, जीवन में एक बार भी जिसने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, उस प्रणाम का कितना बड़ा फल है। तो दश अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जो अवभृत स्नान किया जाता है, और उस अवभृत स्नान करने का जो फल है, उतना बड़ा फल है भगवान को एक बार यदि प्रणाम कर लेवे तो। एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावृते न तुल्य, दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म। फिर भी भगवान कृष्ण को प्रणाम करना और दस अश्वमेध यज्ञ के बाद स्नान करना, दोनों फल समान होने पर भी कृष्ण प्रणाम का उससे भी अधिक फल है। वो क्या है कि दशाश्वमेधी पुनः एति जन्म, दस अश्वमेध यज्ञ करने के बाद पुण्य का फल भोगोगे, लेकिन लौट के आना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण को जिसने प्रणाम किया न पुनर्भवाय, उसको फिर लौट के इस संसार में नहीं आना पड़ता। तो ये प्रणाम का इतने बहुत सारे अर्थ है शास्त्रों में किया है, नामे इति नमः, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, यही क्या है, नमस्कार। सब कुछ हम करते हैं लेकिन अपने अहम को हम नहीं छोड़ पाते, तो फिर नमस्कार का स्वरूप नहीं होगा। वस्तु के साथ जो सबसे खतरनाक वस्तु है हमारे पास, वो है अहम। और अहम का यदि ऐसे अर्थ करें संस्कृत व्याकरण में तो नहीं होगा, ये हिंदी में किसी ने कह दिया न हम इति अहम, जहां हम है ही नहीं। हाँ, तो ऐसा तो अर्थ नहीं होता है तो कोई, लेकिन इतना जरूर है अहम शब्द का जो वाच्य शरीर आदि के साथ जोड़ करके जो हम लोग बोल रहे हैं, इसको मानसिक तौर पर कैसे तैयार करना है। लघु वासुदेव मनन के द्वारा आचार्य वासुदेव यति बता रहे हैं कि जो ये तीन प्रकार के कर्म है, पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्र कर्म, मन वाणी और शरीर, कायिकम वाचिकम मानसिकम, ये तीन जो अधिष्ठान है करण है, कैसा होता है इसका स्वरूप यहां बता रहे हैं। तो न म, ये आप लोग अपने ध्यान में भी रखना कैसे मन के द्वारा ही बनता है। मन को पहले न को करो तो नम उधर बनता है, मन इधर न और जोड़ दो तो मनन, शुरू में न जोड़ दो नमन, हाँ नमन, अपना मन है ही नहीं अपने पास, इस मन को कैसे लगाना है ये तरीका बताने जा रहे हैं। तो पहले पुण्य कर्म का स्वरूप क्या है, मानसिक कर्म, कल ये सब आया था। शंकर जी के बारे में आप लोगों ने श्रवण किया, शिव जी के स्वरूप का वर्णन हुआ थोड़ा बहुत। सविशेष चिंता मतलब सगुण साकार रूप में परमेश्वर का चिंतन करना, अथवा निर्गुण निराकार रूप में परमेश्वर का चिंतन करना, उसको निर्विशेष चिंता। सविशेष चिंता, निर्विशेष चिंता और परलोक चिंता और भक्ति ज्ञान वैराग्य चिंता चिंतन, ये सब जो बुद्धि का व्यापार है, कार्य है, इसी को बोलते हैं मानस पुण्य कर्म। ये सब मानसिक पुण्य कर्म हुए। कई बार आप मन में संकल्प करते होंगे बद्रीनाथ जाएंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे, मानसरोवर जाएंगे आदि आदि, लेकिन अभी तक नहीं जा पाए, नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, संकल्प करने में कोई दोष नहीं है, ये भी पुण्य कर्म होता है। इसके जगह हम कभी नहीं जाएंगे मानसरोवर, मानसरोवर तो वे लोग जाते हैं जो पाप करते हैं, गंगा तो वे नहाते हैं जो पापी होते हैं, हमने थोड़ी कुछ किया है, हमें क्या जरूरत है। ऐसा न बोलकर, ऐसा न सोचकर, आहा कितने भाग्यशाली हैं वे लोग जो गंगा नहा रहे हैं, कितने पुण्यात्मा हैं जो भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, हे प्रभु ऐसा दिन मेरे लिए कब आएगा कि मैं भी आपका दर्शन करूं, हे गंगा माँ आप कब बुलाओगी कि मैं आपके गोद में अवगाहन करूं, अटखेलियां करूं, स्नान करूं। तो एक ये भी सोचने का तरीका है और एक ये भी कि मैंने कोई थोड़ी पाप किया है, मैं क्यों जाऊं, सोचना ही तो है, मन को इधर करो उधर करो, जैसा सोचो, निगेटिव विचार रखो, पॉजिटिव विचार रखो, अच्छे विचार रखोगे तो अच्छा ही फल होगा, ये इसमें कोई संदेह नहीं। हमेशा पॉजिटिव बनने का ही स्वभाव बनाओ, आपके तो जीवन में आनंद से जीवन सराबोर होगा, भरपूर होगा। किसी के लिए कभी भी कहीं भी निगेटिव विचार रखना ही नहीं, न मन से, और जो मन में होगा वही वाणी से निकलता है, और कई बार उसी से हम शारीरिक प्रतिक्रिया भी कर डालते हैं। तो शरीर में जो सामने वाले के लिए हम प्रतिक्रिया करते हैं, हाथ उठाना, पैर उठाना, डंडा चलाना, पहले तो वाणी से गाली देना, और वाणी से गाली देने से पहले मन में उसके प्रति बुरा सोचना, पहले से ही दुर्भावना रखना, उसी का परिणाम है डंडा चलाना, गाली देना, झगड़ा करना। यदि मन में इसको हटाने की कोशिश करोगे तो जैसा है वो, जैसा वो भरेगा। एक सज्जन बोलते थे, उनके रिश्तेदार लोग बहुत उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उनकी पत्नी कहती थी आप पता नहीं क्या है, कहती हूं तो आप नाराज होते हो और ये लोग आपको कभी साथ देते नहीं, फिर भी आप छोड़ते नहीं हो। तो उन्होंने कहा कि देख, कुत्ता यदि हमको काटे तो हम भी कुत्ते को काटे क्या? हाँ, बिच्छू का काम ही है डंक मारना, बिच्छू डंक मारता है तो हम भी बिच्छू बन जाए, हम भी उसको काटे, बिच्छू को सुधारने के लिए हम अपने आप को क्यों बिगाड़े, वो तो उसका स्वभाव है, अपनी प्रकृति है। तो एक तो पंचभूत रूपी जो पांच भूतों की अपनी प्रकृति है, वो तो शारीरिक प्रतिक्रिया होगी, लेकिन पांच भूतों के मिले हुए सत्व अंश से जो बना हुआ मन है, जिस मन में ब्रह्माकार वृत्ति बननी है, अपने स्वरूप का चिंतन होना है, इस मन को कैसा बनाना है, इसके लिए ये बात पर जोर दे रहे हैं कि मन दूषित कब होता है और मन शुद्ध कब होता है। तो अच्छे विचार, अच्छी सोच रखना, अच्छे बातों का चिंतन करना, महापुरुषों का जब हम चिंतन करते हैं, भगवान का जब चिंतन करते हैं, तो हमारे मनोवृत्ति अच्छी होती है। आप किसी खराब व्यक्ति की चर्चा भी करते हो ना, उतनी देर के लिए हमारा मन खराब हो जाता है। खराब व्यक्ति के चेहरा भी स्मरण में आ जाए तो अपना मन खराब होता है। वो तो जैसा है वो तो है ही, हम अपने मन को जो खराब कर रहे, ये कौन सी अच्छी बात है, वो तो सुधरने वाला है नहीं। ऐसा जब चिंतन करेंगे तो धीरे धीरे ये मन बाहर के लोगों के प्रति, वस्तुओं के प्रति जो मन में एक आसक्ति है, लगाव है, बार बार कहते हैं कि अशोभन बुद्धि करो, जो भक्ति ज्ञान वैराग्य चिंता भी कहा है ना, नाम लिया मानस पूर्ण कर्म में, तो भक्ति ज्ञान वैराग्य का चिंतन करना ये भी मानस पूर्ण कर्म है। निर्विशेष सविशेष परलोक, ये तो चिंतन कर रहे, लेकिन इस चिंतन को लाने के लिए अभी जो अनात्म वस्तुओं का, संसार का जो चिंतन चल रहा है, सगुण साकार के रूप में देखा जाए तो यहां भी सबके आकार हमें दिखाई दे रहा है। भगवान के मूर्ति के सामने बैठते हैं, जब हम लोग भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं, धुन लगाते हैं, आप वाणी से जितने जोर से बोलोगे ना, तो बांग में मनसी प्रतिष्ठिता और मनो में वाची प्रतिष्ठितम, आवीरा वीरम एधि वेदस्य म आणिस्थ श्रुतम मे मां प्रहासी ही अनेना अधीतेना। ये जो आता है ना शांति पाठ में, ये वैदिक दश शांति का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा है। यहां तो समय कम होता है, 7:30 बजे तो हम आते ही हैं, फिर हाँ तो 10 शांति पाठ आप घर में कर लिया करो, तो ये फिर 2-3 शांति पाठ करते हैं ना, ये तो यहां की परंपरा है, नियम है। लेकिन आप कहोगे यहां कराते नहीं तो क्या करे, तो अपने घर में कर लिया करो। तो उसमें है बांग में मनसी प्रतिष्ठिता, बांग वाणी में, मेरी जो वाणी है मनसी मन में प्रतिष्ठित हो, और मनो में वाची जो मेरा मन है वो वाणी में प्रतिष्ठित हो। इसका मतलब है जब भी आदमी कुछ बोलता है ना, तो जो उसके मन में होता है वही बाहर निकलता है। मनस्येकम वचस्येकम और कर्मण्येकम सदात्मनाम, मन से वाणी से और अपने क्रिया कर्म से शारीरिक क्रिया के द्वारा, तीनों में जो एक हो, जो सोचता है वही बोलता है और जो बोलता है वही करता है, ये हो गया सज्जनों का लक्षण। और अभी हम लोगों में क्या हो जाता है, मनस्यन्यत मन में कुछ अन्य बात है, वचस्यन्यत मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, और करते कुछ और है, बात करते रहते हैं। अरे चुप रहो, आ गया क्या हो गया, आ गया तो बोलो, जो बोलो उसके सामने बोलो ना, क्यों पीछे बोलते हो। यह है पिशुनता, चुगलखोरी, आगे आने वाला है। वाणी के द्वारा हम लोगों से क्या क्या दोष हो जाता है। तो मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत, मनसी अन्यत वचसी अन्यत और कर्मणि अन्यत दुरात्मनाम, जो दुरात्मा है जिनका मन दूषित है, ये लोग बोलते कुछ हैं, सोचते कुछ हैं, करते कुछ हैं। सज्जन लोग जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते वही करते हैं। अच्छा, दुनिया में हम लोग भी उसी को अच्छा मानते, उसी के साथ व्यवहार करने में अच्छा लगता है, जो व्यक्ति सिद्धांती हो, जो आपके सामने बोले, जो उसके मन में वो कह देवे वही करके दिखाए, तो अच्छा लगता है। और जो लोग बढ़िया, कौन बोल रहा था ना अभी उस दिन, अब वही ट्रम्प बिजनेसमैन के उसके मेंटेलिटी है अभी भी, राष्ट्रपति बनने के बाद भी, तो बिजनेसमैन में तो अपने नीचे से वर्कर आदि होते हैं, ये तुमको करना पड़ेगा, इतना बेनिफिट देना पड़ेगा, वो आदत होने से राष्ट्रपति बनने के बाद भी उसको जो आता है ये होना चाहिए, हम अमेरिका आना सबको रोक देंगे, किसी को नहीं आने देंगे, वो अपनी कंपनी की तरह अमेरिका को समझ रहे। समझना चाहिए कि एक देश है, राष्ट्र है, इसमें पहले भी हमसे कोई राष्ट्रपति हो चुके और हमारे बाद भी कोई आएंगे, तो हम अपने कार्यकाल में ऐसे जो पोलाइट रूप से काम करे वो पॉलिटिशियन है, और जो बिजी बन करके काम करो वो बिजनेसमैन है। मैं बहुत बिजी हूं, बिजनेसमैन। और जो हमेशा पोलाइट, हमारे देश के सब जनता है, बोलना चाहिए कि इस देश के सेवा में, विकास में जो भी सहयोग करेंगे वो वेलकम, जो देश के खिलाफ काम करे वो भले ही देश में ही पैदा किए, उसको हम बाहर करेंगे, तब तो बोलना अच्छा, ये है नीति। तो ये सब हम बाहर की बातों में नहीं जाते, ये हम लोगों के घर की बात है। बच्चे हमारे अनुकूल है, ये तो मेरा बेटा है, जरा से नहीं माना, मुन्ना तुमको रहना है कि नहीं रहना है घर में, वहीं उसको हम निकालने की बात करते, डराते हैं, धमकाते हैं। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम, और दुर्जन लोग महाराज इतने खतरनाक होते हैं, दुर्जनों का लक्षण किया है नीति शास्त्र में कि बिच्छू के तो पीछे पूंछ में डंक जब मारते तब जहर होता है, वहां मक्खी के मस्तक में जहर होता है, वृश्चिकस्य विषम पुच्छे और मक्षिकायास्तु मस्तके और तक्षकस्य विषम दंते, सांप के दांत में जहर है, लेकिन सर्वांगे दुर्जने विषम, जो दुर्जन व्यक्ति है उसके तो एड़ी से लेके चोटी तक जहर भरा हुआ है, बोलेगा तो जहर उगलेगा, करेगा तो जहर वाला काम करेगा, हंसता भी है तो उसमें भी जहर दिखाई देता है, उसके हंसना भी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पता लगता है कि जहरीला आदमी है। इसलिए भोला बनोगे ना, भगवान शंकर का नाम है भोला और भाला, भोले बाबा, शंकर जी त्रिशूल रखते हैं, जो दुर्जन लोग हैं उसको तो भाला कर देते हैं, और भला नहीं भाला, भाला होता है ना भाला चीज, भोला और भाला, बोले भोला भी हूं तो भाला भी हूं, दुर्जनों के लिए वो भाला है तो सज्जनों के लिए वो भोले, ऐसे भोले बाबा। रुद्र शब्द से बता दिया ना, रुद दुखम द्रावयति इति रुद्र, जो दुखों का द्रवण करे विनाश करे उनको रुद्र बोलते हैं, और जो दुर्जनों को दंडित करे और अपने भक्तों को भक्तों की रक्षा करे उनको रुद्र बोलते हैं। रुद्र के बहुत सारे अर्थ आते हैं शास्त्रों में। तो कहने का मतलब है दुर्जन व्यक्ति के अंदर इतने जो जहर है, और यहां पर शरीर के पुण्य कर्म पाप कर्म और मिश्र कर्म से पहले सबसे पहले दिया मन का, वाणी भी बाद में आया, क्यों? क्योंकि ये जो मन है, अभी आप लोगों ने ब्रह्माष्टमी वाला में पाठ किया कि अंदर यदि ठंडे अंतः शीतम, तो बाहर भी वो ठंडक दिखाई देती है, बाहर कितने भी ठंडक हो और मन में यदि आग लगी हो तो वहां पर ठंडक पने का अनुभव नहीं होता। अंदर यदि परमेश्वर का चिंतन है सविशेष निर्विशेष आदि के रूप में, उस व्यक्ति के चेहरे में व्यवहार में वाणी में अपने आप दिखाई देता है। और यदि अंदर हमारे दूसरी वृत्ति है, बाहर हम कितने भी अच्छे बोले वो कहीं न कहीं, बोलते ना जो आदमी कोई कई किसी को पूछो आप कहां के रहने वाले हो, तो किसी कई लोगों के तो एक्सेंट से पता चल जाता है ये बंगाली हैं, उड़ीसा के हैं, साउथ के हैं, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, जो भी है। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा अपने भाषा को परिमार्जित कर लिया, इतने फर्राटेदार हिंदी इंग्लिश बोलता है पता नहीं चल रहा है कहां का है, तो जब ट्रेन में सो रहा हो और उस समय यदि उसके कान में पानी डाल दो तो जैसे उठेगा तो उसकी जो अपनी भाषा होगी उसी में गाली देके उठेगा, तब पता चल जाता है ये यहां का रहने वाला है। हाँ, अब आया पकड़ में, वो कहीं न कहीं से झकझोर करके अंदर से आता ही है, कितना भी कर लो। तो मानसिक पुण्य कर्म का जो स्वरूप है, निर्विशेष चिंता, सविशेष चिंता, परलोक चिंता, भक्ति ज्ञान वैराग्य चिंता, ऐसे मानस पूर्ण कर्म को हम लोग करें। ये सब आप करते रहोगे भगवान का चिंतन, तो समझ लीजिएगा कि हमारा मानस पूर्ण कर्म दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और इसके यदि लोक की चिंता करोगे, घर की चिंता करोगे, तो ये सब क्या होगा? तो दूसरा बता रहे हैं, विषय चिंता परेशान, अपकार चिंता, दूसरों का नुकसान कैसे हो जाए, विषयों का चिंतन करना, वेद शास्त्र को प्रमाण न मानना, वेद शास्त्रयो हो अप्रामाण्य चिंता, धर्म और अधर्म आदि कुछ भी नहीं है, बिना मतलब की बात है, धर्म अधर्म आदि अभाव चिंता, ये सब जो बुद्धि का विकार है ये अपने आप में मानस पाप कर्म है। ये मानस पाप कर्म, मानसिक पाप कर्म, अंदर जो होता है ना शरीर में दिखाई देते हैं, और शरीर के साथ जो हम करते हैं वो मन में जाता है, ये बड़ा एक दूसरे का पूरक है। सविशेष चिंता निर्विशेष चिंता पूर्ण चिंताया अपि, भले ही आप सविशेष चिंतन करते हो, निर्विशेष चिंतन भी करते हो और पूर्ण का भी चिंतन तो करते हो, लेकिन साथ में विषय आदि का भी चिंतन चल रहा है, तो जहां पाप और पुण्य दोनों को मिला करके चिंतन चलता है उसका नाम हो गया मिश्र मानस कर्म। दोनों अभी चलता हो तो एक तरफ हो गए पुण्य कर्म, एक तरफ ही हो गए निगेटिव में पाप कर्म, लेकिन ना अभी पुण्य है पूरा और ना ही पाप है पूरा, कुछ पाप भी हो जाता है कुछ पुण्य भी हो जाता है, ऐसा जो मिला जुला रूप है इसको बोलते हैं मानस मिश्र कर्म। समझ में आ गया, मिश्र मतलब मिला हुआ, मिश्रण मिक्स अप जो बोलते मिलाना, तो ये यहां कोई मिश्रा तो नहीं है? अरे हो तो कोई बात नहीं, सुन लो, उत्तर प्रदेश में मिश्रा होते, मिश्रा में भी अलग अलग मिश्रा होते, जैसे गुजरात में लेवा पटेल कड़वा पटेल ऐसे होते ना, तो ऐसे मिश्राओं में भी बहुत भेद होता है। तो उत्तर प्रदेश में मिश्रा ब्राह्मण थे, तो गांव की भाषा में कोई मिश्र जी कोई मिसिर जी ऐसा बोल देते हैं शॉर्टकट में, और मिश्रा जी इतना कौन बोले, मिसिर जी आ गए। तो मिसिर ब्राह्मण बड़े फेमस प्रसिद्ध थे उस एरिया में, पंडित जी भाई कोई सो रहे हो तो जग जाओ, ऐसी कथा नहीं सुनोगे तो पता ही चलेगा मिश्रा कौन होते हैं। तो गांव के जो पंडित जी थे रोज जाते थे भंडारा खाने, श्रावण के महीने में जिसने खीर नहीं खाई उसने जिंदगी व्यर्थ गंवाई। अब तो भादों का महीना लग गया, अब जो खा लिया खा लिया, अब अगले साल के लिए सोचना। तो जाते थे रोज निमंत्रण में, तो एक गांव का कोई, उस समय तो हिंदू मुसलमान का इतना भेद था नहीं, तो मुसलमान था एक काम कर रहा था, बोले पंडित जी आप रोज जाते हो भंडारा खाने, कभी हमको भी ले चलो। तो बोले अरे तू मुसलमान है हम पंडित हैं, बोले आप उपाय बता दो ना, जैसा जैसा कहो वैसा कर लेंगे, भंडारा खाने से मतलब है ना। बोले ठीक है फिर मेरी तरह तिलक लगा लेना, चोटी में गांठ दे देना, त्रिपुंड सब लगा के चलना मेरे साथ, और क्या करना पड़ेगा। बोले यजमान तुमको देखेगा, नया चेहरा नया पंडित, तो जरूर तुम्हारा परिचय तो लेगा, वो तो पूछेगा कौन हो, तो बोल देना मैं ब्राह्मण हूं, हाँ मिसिर ब्राह्मण हूं, क्योंकि मैं भी मिश्रा हूं, तो मेरे साथ रहोगे तो काम चल जाएगा। बोला ठीक है पंडित इतना तो कर लेंगे। ये सब कोड वर्ड होते ना, किसी के वहां नए जगह में जाओ पता ना हो, प्रेमपुरी में आने वाले को पता है कि हमको शांति से बैठना है, अभी शांति का पाठ होगा, यहां माइक वाले अपने उसमें बैठ जाते हैं, कथा व्यास अपनी जगह में बैठ जाते हैं, जो नया आदमी आता है सोचता है किधर बैठूं, कहीं भी बैठ जाएगा पता ही नहीं चलता। तो एक कोड वर्ड होता है, मंदिर में जाने वाले को पता है भगवान को जाकर प्रणाम करना है, और जो कभी मंदिर नहीं गया तो वहां भी ऐसे ऐसे घूमता देखता रहता है क्या हुआ, जैसे रहता है कोई एग्जीबिशन है। तो ये जो कोड वर्ड है तो सिखा दिया कैसे कैसे क्या करना है। अब जब यजमान आया भोजन के समय में तिलक लगाते हुए तो वहीं रुक गया, बोले भाई तो नए पंडित जी दिख रहे हैं, भाई बताओ आप कौन हो। तो बोलता है मैं मिसिर ब्राह्मण हूं, जैसा पढ़ा के रखा था सिखा के। अब उससे आगे तो बताया नहीं था, अब उसको पता भी नहीं था, यजमान थोड़ा सयाना था, बोलता है बताओ कौन सा मिसिर ब्राह्मण हो। तो उठ के खड़ा हो गया, बोलता है हाय अल्लाह मिसिर में भी घिसिर फिसिर, हाँ पहले तो मिसिर बन गए उसमें भी फिर घिसिर फिसिर कर दिया। तो मिश्रा ब्राह्मण जो होते बड़े हंसते हैं, बोलते हैं हाँ हम लोगों में है तो घिसिर फिसिर तो है ही, ये शुक्ला के चूल्हा है, ये दुबे जी के हैं, ये चौबे जी के हैं, द्विवेदी के हैं, चतुर्वेदी के हैं, बहुत सब नहीं होता था पहले, अब तो कुछ भी नहीं है। अब पंडित जी ट्रेन में बैठे थे खिड़की के पास, तम्बाकू खाने की आदत थी, तो जो कांख में झाड़ू दबा के और जो था सफाई कर्मी वही खिड़की के पास खड़ा हो गया, वो तो अपने धुन में तम्बाकू ऐसे से लगा रहा था, अब पंडित जी के तंबाकू खाने की आदत, तंबाकू खत्म हो गई, जाए तो कहां जाए, देखा ही मिला रहा है तो इसी से मांग लेते हैं। बोला भैया थोड़ा बढ़ा के बनाना, इधर भी देना। देख रहा है बड़े घूर घूर के तिलक लगाए हुए पंडित जी हमसे मांग रहे हैं, वो क्यों मना करेगा। बना दिया बर्था और निकाला, बढ़ा के फिर बनाया, चुटकी से जब देने लगा हाथ में, पंडित जी बोलते ऊपर से देना, हाथ मत छूना। समझ में आ गया? तो ये सब जो है इसको बोलते ढोंग पाखंड। इतना भी नहीं होना चाहिए, जितना हो सके निभाओ। घर में आप इतना नियम न बनाओ। हम ऐसे कई परिवार को जानते हैं कि किचन में कोई चीज छू दिया तो हाथ धोते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं, तो वहां पति से झगड़ा, बेटे से झगड़ा, घर में कलह क्लेश महाभारत। इतने भी छुआछूत न करो और इतना भी अपवित्र न रहो कि बाथरूम जाते हो ना मुंह हाथ भी नहीं धोते हो, कुल्ला भी नहीं करते हो, ये तो अत्यधिक अपवित्रता भी हुई। और किचन में कोई आके कुछ छू दिया तो तुरंत उसको धोना, गंगा जल छिड़कना, तो आदमी को तो किचन में जाने में भी डर लगेगा, भाई कुछ छू ना दू, कुछ हो ना जाए। तो ये सब हमारे छोटे छोटे जो कर्म होते हैं ना, ये हम लोगों को पता नहीं चलता है। बोलने के लिए बोल दिया, अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जल में नहाने के बाद भी ये गंगा मां है भावना नहीं होती। वहीं लोग कुल्ला करते हैं, थूकते हैं गंगा जी में, लोग शंका भी कर देते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो कहने का मतलब है मिश्र कर्म कैसे होते हैं ये आप लोगों ने अभी सुना। पुण्य भी हो रहा है लेकिन साथ में कहीं पाप भी तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है। या केवल पाप ही हो रहा है, पुण्य हो ही नहीं रहा है, उससे भी बचना है। केवल केवल यदि पुण्य कर्म हो, केवल परमेश्वर का ही चिंतन है, भक्ति ज्ञान वैराग्य का ही चिंतन है, तो समझ लीजिए आपका मानसिक पुण्य कर्म उत्तरोत्तर बढ़ रहा है। और परमेश्वर का चिंतन तो है ही नहीं, दुनिया का ही चिंतन है, कैसे होगा क्या होगा, वो केवल पाप कर्म कर रहा है। और कभी हम भगवान को भी याद कर लेते, कभी दुनिया को भी याद कर लेते, तो मिला जुला होकर के मिश्र कर्म हो जाएगा। विषय चिंतादि पाप चिंतया मिश्री कृत्य अनुष्ठानम मानसम मिश्र कर्म। मन के बाद वाणी के बारे में बता रहे हैं। वेदाध्ययनम शास्त्र पठनम गीता पठनम सहस्रनाम पठनम पंचाक्षरादि मंत्र जप भगवन नाम कीर्तनम परोपकार वार्ता सत्य वाक्यम मृदु भाषणम। पूर्व भाषण मतलब सत्य बोलना होगा, पूर्व भाषणम च सत्यम प्रिय हितम च, प्रिय बोलना, पूर्व भाषण मतलब प्रिय। च वाचा क्रियमाणम वाचिकम पुण्य कर्म, उसमें आता है 17वें अध्याय गीता में, मन वाणी और शरीर तीनों के द्वारा होने वाले, तो उसमें आता है स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। वाङ्मय तप वाणी का तप है, वेदों का अध्ययन करना वाणी का तप है। बोलते हो दुनिया की बात करते हो, क्या फायदा। कल क्या बोला श्री मानस पूजा में कि स्तोत्राणि सर्वागिरो, सर्वागिरह जितनी भी हमारी वाणियां हैं, वाणी है जो बोलते हैं हम, वो सब के सब आपके लिए स्तोत्र बन जाए। हे प्रभु अलग से तो मैं स्तोत्र नहीं कर पा रहा हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती, लेकिन जो मैं दिन भर बोलता हूं बकवास भी करता होऊंगा, वो सब के सब आपके स्तोत्र बनकर के पुष्प बनकर आप पे चढ़ जाए। स्तोत्राणि सर्वागिरो। और यद यत कर्म, जो जो हमसे कर्म होते हैं, तद तद अखिलम, वे सब के सब तव आराधनम, आपकी आराधना बन जाए। हे शंभो ऐसी कृपा करना। तो वेद का अध्ययन जो वेद पढ़े वही करेंगे, तो शास्त्र पठनम, वेद नहीं जानते हो पढ़ते हो तो दूसरा शास्त्र पढ़ो, गीता पढ़ो गीता पठनम, सहस्रनाम पठनम में सहस्रनाम से, एक गीता प्रेस वालों ने सहस्रनाम स्तोत्र संग्रह करके पुस्तक निकाली है, उसमें आपको जिस भगवान के जिस देवी के सहस्रनाम चाहिए मिल जाएगा। तो कोई भी विष्णु सहस्रनाम तो करना ही हुआ, बाकी यदि आपके पास समय अधिक है या अधिक से अधिक कुछ करना चाहते हो बाकी सहस्त्र नाम का पाठ करना, पंचाक्षर ओम नमः शिवाय जो मंत्र तो है ही, और आदि से जो बाकी और भी कोई मंत्र हो जिससे परमेश्वर की आराधना हो, चिंतन हो, तो उन मंत्र आदि का जप करना। भगवान नाम कीर्तनम, जब केवल वाणी से धीरे धीरे बोलते हैं, एक ही नाम को बार बार दोहराते हो तो हो गया जप। और जब मुरज वाद्य क्या है, मुरज डिंडिम वाद्य विलक्षणम मधुर पंचमनाद विशारदम प्रमथ भूतगणैरपि सेवितम भजतरे मनुजा गिरिजापतिम। तो मुरज मृदंग बजाना, डिंडिम डमरू बजाना, ये सब जो किया जाता है इसको बोलते कीर्तन। कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है, भगवान नामों का संकीर्तन करना साथ में मिलकर के जो किया है उसको संकीर्तन बोलते हैं। परोपकार वार्ता, दूसरों का उपकार कैसे हो, दूसरों का भला कैसा हो, ये सब हमेशा सोचते रहना, वाणी से करते रहना। सत्य वाक्यम, कभी भी झूठ नहीं बोलना, और सत्य तो बोलो लेकिन उसमें होना क्या चाहिए, मृदुता कोमलता। कई बार लोग सत्य तो बोलते अखड़ जैसे बोलते हैं, गंवार जैसे, वो अच्छा नहीं लगता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात और न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन प्रिय लगने वाला सत्य बोलो, लेकिन भगवान बोलते हैं ना सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य ही है लेकिन प्रिय नहीं है तो भी अच्छा नहीं, सत्य भी है प्रिय भी है लेकिन उससे कोई हित नहीं हो रहा है तो वो भी बेकार की बात है। तीनों होना चाहिए, सत्य भी हो, प्रिय लगने वाला भी हो और हितकारी हो, तब जाके बात बनेगी। पूर्व भाषणम का अर्थ यहां किया है नीचे, विनय द्युति, विनय नम्रता। मृदु भाषण तो हो गया कोमल, और कोमल तो आप बढ़िया बोल रहे, हाँ वो तो है बहुत दुष्ट आदमी है, तो आप तो बोल रहे बड़े सॉफ्ट को है तो कोमल ये, लेकिन इसमें विनय नहीं है, नम्रता नहीं है, बहुत ही खतरनाक आदमी है ये तो, जहरीला है। तो वाणी कितने भी आप शांत होकर बोल रहे लेकिन जहरी उगल रहे हो, फायदा क्या, अरे ये तो बहुत बढ़िया आदमी है बोल तो रहा है लेकिन थोड़े कर्कश आवाज है, वो भी ठीक नहीं। तो ये सब वाणी के जो तप करने के लिए पुण्य कर्म कैसे बनता है, तो ऐसे बनेगा, वेद अध्ययन, शास्त्र पठन, गीता पठन, सहस्रनाम पठन, पंचाक्षरादि मंत्र जप, भगवान नाम कीर्तनम, परोपकार वार्ता, सत्य वाक्य, मृदु भाषणम, पूर्व भाषणम च वाचा क्रियमाणम वाचिकम पुण्य कर्म, ये वाणी का पुण्य कर्म हुआ। वेद शास्त्रों में भी दोष निकालना, देवताओं का भी दोष चिंतन करना अर्थात दूषित बताना, असत्य बोलना, पिशुनता चुगलखोरी करना, पारुष्य कठोर वाणी का प्रयोग करना, अपहास मतलब उपहास उड़ाना, दूसरे के मजाक उड़ाना, ये सब के सब वाणी का जो है ना पाप कर्म है, वाचिकम पाप कर्म। तो ये नहीं होना चाहिए, शास्त्रों के बारे में दोष मत निकालो, देवता आदि के बारे में कोई बुराई मत करो, असत्य नहीं बोलो, पिशुनता ये सबसे खतरनाक चीज है, इसका नाम रखा है चुगलखोरी, घूसखोरी, ऐसे ये क्या नाम है, इसका मतलब क्या होता होगा, घूस खाया तो घूसखोरी, और चुगली करके जब पेट भर जाए तो उसका नाम पड़ेगा चुगलखोरी, शराबखोरी, भांगखोरी, ऐसे तो है ये सब, हराम का खाए तो कितनी बड़ी गाली है, तो उसी तरह से चुगलखोरी है, दूसरे की चुगली करके अपना काम बनाना, वो ऐसा है वो ऐसा है, कभी भी नहीं बोलना चाहिए, सब जो जैसा है ठीक है, अपने गिरेबान में झांक के देखो भला कि मैं कौन हूं, हमको कैसा होना चाहिए, कभी भी किसी के ऊपर उंगली उठाओ तो बाकी चार उंगलियां तो अपनी तरफ ही होती है। इसलिए हम तो सामने वाले की तरफ एक उंगली दिखाते हैं, लेकिन बाकी उंगली तो हमें अपनी ओर ही इशारा कर रहे हैं कि भाई तुम पहले अपने को सुधार लो, तब दूसरे के लिए कुछ बोलना। उपहास करना, मजाक उड़ाना, ये कोई थे विकलांग, आजकल विकलांग का एक नाम रखा है दिव्यांग, विकलांग नहीं बोल सकते, है तो संस्कृत के शब्द विकल अंग, सकल अंग सकलांग, और जिसका अंग विकल हो गया, एक कला घट गई, तो विकल अंग विकलांग, अब उसका नाम रख दिया दिव्यांग। सुनने में तो अच्छा है, लेकिन तरह से मजाक ही भी देखा जाए तो अंग है ही नहीं, तो दिव्य किसको बता रहे हो आप? जो अंग है वो तो दिव्य अंग है, जो अंग नहीं है उसके दिव्यांग थोड़ी होगा, तो विकलांग ही होगा। लेकिन कानून बनाया तब आपको वही बोलना पड़ेगा। अब ट्रेन में देखा है, एक बार प्लेटफॉर्म पे खड़ा था तो एक डब्बा शायद विकलांगों के लिए भी होता है, दिव्यांगों के लिए, और एक आदमी लंगड़ाते लंगड़ाते है और आराम से ट्रेन में चढ़ गया, बाद में टांग ठीक हो गई। डिसेबल, हाँ, पार्किंग फॉर डिसेबल, तो जो बेज लगा देते हैं गाड़ी में ना आजकल, वो भी लोग बनवा लेते। अपने इंडियन इतने होशियार होते हैं, विदेशों में देखा वो बेज बनवा लेते कैसे क्या करके, कुछ टांग में दर्द हुआ नहीं, और जहां जाएंगे तो डिसेबलों की पार्किंग खाली रहती है, वहां जाकर के अपनी गाड़ी लगा देते हैं और बेज रख देते हैं, चलते फिरते बढ़िया है। ये तो मिसयूज हुआ ना भाई, जो कुर्सी में ही बैठ सकते उनको पहले बैठने दो, आप जमीन पे भी बैठ सकते हो तो आप जमीन पे बैठो, अब बेचारे जो जमीन पे नहीं बैठ सकता वो खड़ा रहेगा, और जो जमीन पे बैठ सकता वो कुर्सी पे कब्जा कर लिया। तो ये विकलांग दिव्यांग जो शब्द प्रयोग किया जाता है ना, तो वो विकलांग है, मंदिर में दर्शन कर रहे थे तो उन नाथ जी श्रीनाथ जी में वो झापड़िया जी होते वहां, और इतनी भीड़ होती है, धक्का मारते तो बोले मेरे तो इसे टांग कमजोर है और तोड़ देंगे ये लोग, उस साइड में खड़े हो गए। तो एक कहीं से पुलिस वाला आया, उनको फट से अपने गोद में उठा के उनको दर्शन कराया, तो बोलते तो श्रीनाथ जी आ गए दर्शन कराने के लिए। तो उसमें कोई हंस रहा था तो इनको आ गया गुस्सा, बोले खूब हंसो हंसो, तुमको तो भगवान ने अच्छे अंग दिए ना, हाँ, मतलब किसी के आप हंसी उड़ा रहे हो, खुदा न खास्ता कल कहीं अपने साथ भी कुछ न हो जाए। किसी के हम वाणी की हंसी उड़ाते हैं, किसी के चलने फिरने के नकल करते हैं, ऐसा चलता है, ऐसा लंगड़ाता है, ऐसा अकड़ता है, ऐसा, ये सब क्यों करना है? ये सब के सब उपहास वार्ता में आते हैं, दूसरे की हंसी उड़ाना। अष्टावक्र जी ने जैसे लताड़ा था राजा जनक के सभा में कि हमने सोचा था कि यहां सब ज्ञानी है, लेकिन लगा ये सब के सब। वेदाध्ययने पूजा काले एवं आदि पुण्यवार्तासु, वेद का अध्ययन चल रहा है, सत्संग चल रहा है, लेकिन वहां पर भी कुछ ना कुछ तुमको पता चला वो ऐसा है, अरे कथा चल रही, कथा सुन लो, बाद में बात करेंगे। तो पुण्यवार्ता दिशु, सत्संग में शास्त्र की चर्चा होते समय जो इधर उधर की फालतू बातें करे, ये सब के सब परनिंदा, असत्य, परिहास। हो तो रहा है वेद का अध्ययन, होता रहा है पूजा पाठ, लेकिन वहां पर ये सब बातें भी हो रही, दूसरे की निंदा भी की जा रही है, किसी की हंसी भी उड़ाई जा रही है, असत्य भी बोला जा रहा है। लौकिक वार्ता मतलब दुनियादारी की बातें करने वाले, ये जो दोनों एक साथ जब चलते हैं तो इसको बोलते हैं वाचिक मिश्र कर्म, ये मिश्र वाचिक कर्म हो गया। तो मन और वाणी इन दोनों के बारे में आप लोगों ने सुना, क्योंकि मैं इसको थोड़ा संक्षेप संक्षेप में लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये सब हम लोग करते दिन रात का सबका अनुभव है, इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाना, क्योंकि सबको पता है कि सत्य बोलना अच्छा होता है, लेकिन हमको लगता है कि सब लोग तो हमसे सत्य बोले, लेकिन हम भले ही किसी से झूठ बोले कोई बात नहीं, लेकिन होता क्या है, जब आप झूठ किसी से बोलोगे तो वो आपसे ही तो सीखेगा। जो आप विरासत में देंगे, संस्कार में अपने बच्चों को देंगे, जब कोई आ रहा है घर में, आप बोलते हैं बच्चे से कि कह दो कि हमें घर में नहीं है, तो आपसे वो क्या सीख रहा है? झूठ बोलना सीख रहा है कि सत्य बोलना सीख रहा है? झूठ बोलना सीख रहा है। तो अब आप कहोगे महाराज अब अपनी मिलने की इच्छा नहीं है तो क्या करें, वहां तो यही बोलना पड़ेगा। अरे मिलने की इच्छा नहीं है तो आप उससे सीधे कह दो अपने बच्चे से कि अभी हमारी मिलने की इच्छा नहीं है, इसलिए जो है उनको मना कर दो, बस बात खत्म। अंदर है, एक आदमी गया किसी के पास, गांव की बात होगी, लकड़ी काटनी थी तो कुल्हाड़ी मांगने गया, और जिस तख्त पे वो बैठा था कुल्हाड़ी वाला, उसके तख्त के नीचे कुल्हाड़ी रखी थी। सामने वाला बोलता है कुल्हाड़ी चाहिए, वो बोलता है कुल्हाड़ी नहीं है। तो बोलता है तख्त के नीचे तो है, बोलते हमारे लिए है ना, तुम्हारे लिए नहीं है, बात समझ लो, नहीं है तो नहीं है, मतलब हमको तुमको देना नहीं है, बात खत्म। तो ये सब व्यवहार की बातें तो हम सब जानते हैं दिन रात, इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ करना ही तो पुरुषार्थ है। स्वाभाविक रूप से तो हम लोगों की प्रवृत्ति किधर है, उल्टी बातें करना, उल्टा सोचना, उल्टा बोलना। अब शरीर के द्वारा होने वाली जो प्रतिक्रिया है, पुण्य कर्म, पाप कर्म, मिश्र कर्म, ये सब फिर कल करेंगे विचार, समय हो गया। हरिओम।